आप सबका राधा गोकुलानंद मंदिर के रविवार सत्संग में स्वागत है। यह राधा गोकुलानंद मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के कथाएं चलती रहती हैं, उनके नाम का संकीर्तन चलते रहता है और भगवान की सेवा अन्य प्रकार से भी होती है। एक मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, एक ऐसी जगह है जहां पर समाज के सारे लोग आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपने मनुष्य जीवन को किस तरह से सफल बनाना है इस बात को पूरी करने के लिए प्रशिक्षण यहां मिलता है। भक्तों का संग कोई साधारण चीज नहीं होता है, क्योंकि ऐसे संग में हमें वो भेंट मिलता है जो किसी भी बाजार में दुकान में पैसे खरीदने से पैसे देने से नहीं मिलेगा, और वो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आदर प्रेम आसक्ति। यही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, लेकिन संसार में लोगों को इस विषय में रुचि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुनेः। जो समय जनसाधारण के लिए रात होती है वो आत्मसंयमी लोगों के लिए या भगवान के भक्तों के लिए जागृति का समय है, जागरण का समय है, और जो जनसाधारण के लिए जागरण का समय है वो भगवान के भक्तों के लिए निद्रा का समय है, रात का समय है। इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि जिन चीजों में संसार रुचि लेती है उन चीजों में भक्तों को कोई रुचि नहीं है, और जिन चीजों में भगवान के भक्त रुचि लेते हैं उन चीजों में संसार को कोई रुचि नहीं है। इसलिए भक्तों की रात संसार का दिन है और भक्तों का दिन संसार की रात होती है। लोगों को अपने हित के लिए कार्य करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि उनका स्वार्थ, वास्तविक स्वार्थ किस में है। सारे शास्त्र हमें यही बताते हैं कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं और श्री कृष्ण की प्राप्ति करना हमारे जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, बल्कि ये कहा जाए कि एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन अभी संसार में लोग भोग वृत्ति से भरे हुए हैं। भोग वृत्ति सभी के हृदय में एक चुड़ैल के समान, एक भूत के समान हृदय में है, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम भोग नहीं करेंगे, हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, तो ये भी एक भूत की तरह है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, जब तक ये भुक्ति और मुक्ति ये दो चीजें हमारे हृदय में है, पिशाची हृदय वर्तते, जब तक हमारे हृदय में ये दो पिशाची अर्थात दो चुड़ैल भूत हमारे हृदय में रहेंगे, तावत भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्यदयो भवेत। तब तक हमें वास्तव में दिव्य आनंद की प्राप्ति, भक्ति का आनंद कभी भी नहीं मिल सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी, या वर्णन तो सुना होगा कभी अखबार में, उपन्यास में या कहीं और, कि जब किसी के ऊपर भूत सवार हो जाता है तो वो अलग अलग प्रकार से बकबक करने लगता है, कुछ भी बोलता है जो कि सत्य नहीं है, सत्य से दूर है। तो ठीक उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के हृदय में भुक्ति और मुक्ति ये दो भूत सवार हो जाते हैं तो आदमी कुछ भी बकबक करता है, मैं कितना महान हूं, मैं स्वामी हूं यहाँ का, मैं भोगता हूँ, संसार मेरे भोग के लिए बनाया है, मैं इतना बड़ा मंत्री हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरा इतना कुछ है, समाज में मेरा इतना नाम है, मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे कितने अच्छे गुण हैं। तो नाना प्रकार से बकबक करता है आदमी, और उसका सोच विचार का ढंग, रहन सहन का ढंग भी एक ऐसे ही व्यक्ति की तरह होता है जिसके ऊपर भूत सवार हो गया है। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर भूत सवार हो गया है और उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहिए। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई भूत सवार नहीं है, चाहे भक्ति का या मुक्ति का। इसलिए वो केवल श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं और किसी भी विषय के बारे में उनके हृदय में दिलचस्पी नहीं होती है। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ तस्य तयत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूत गोस्वामी श्रीमद भागवत में कहते हैं नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषिगणों को कि जब कोई व्यक्ति साधारण ऐसे ही रहता है और संसार में जीता है तो सूरज के उदय होकर अस्त होने तक एक दिन जब बीत जाता है तो वो उसकी आयु कम होती जाती है और वो मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है साधारणतः। लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जिनका नाम उत्तम श्लोक है, जिनका वर्णन बहुत ही सुंदर श्लोकों से कविताओं से किया जाता है, उस श्री कृष्ण के बारे में जब भक्त चिंतन करते रहते हैं, बातचीत श्रवण कीर्तन करते रहते हैं यत् क्षण नीत, तो बहुत कम समय भी ज्यादा समय भी अपना जीवन का केवल कृष्ण कथा में बिताते हैं तो उनके लिए समय का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, अर्थात मृत्यु की ओर वो नहीं बढ़ते हैं लेकिन सनातन जीवन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि मृत्यु तो होगा भक्तों का भी, उनका शरीर भी नाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी मृत्यु के पश्चात भक्त को सनातन जीवन, शाश्वत एक आध्यात्मिक चिन्मय देह भगवान के धाम में प्राप्त होगा। इसलिए जो व्यक्ति अपना समय कृष्ण कथा करके बिताता है वो अमर जीवन की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन जो व्यक्ति संसारी विषयों में अपने मन को आसक्त रखता है वो कभी भी जीवन को सफल नहीं बना सकता, उसे बारंबार संसार चक्र में आना पड़ता है। इसलिए संसार के लोग रमण करते हैं अलग अलग प्रकार की चीजों में, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनका हित किस चीज में है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र गृणम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि संसार के लोगों के पास में बहुत सारे विषय हैं बोलने के लिए, राजनीति में क्या चल रहा है, खेलकूद में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, दूसरे देश में क्या चल रहा है, और ऐसे चीजों में ही, ऐसे विषय में ही उनका वो रमण करते रहते हैं, क्योंकि अपश्यताम आत्म तत्वम, उनको आध्यात्मिक तत्वों के बारे में कोई रुचि नहीं है। गृहेषु गृहमेधिना, उनका एक ही उद्देश्य है घर में रहकर कैसे भोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा धन कैसे एकत्र किया जाए, ज्यादा से ज्यादा भोग और इंद्र तृप्ति कैसे की जाए, यही लोगों की धारणा रहती है। इसलिए भाग शास्त्र में बताया जाता है कि जब हम कृष्ण की कथा में रमण करते हैं तो भोग की भावना दूर चली जाती है। जैसे कभी जिस व्यक्ति के ऊपर भूत सवार हो जाता है तो किसी व्यक्ति को बुलाते हैं उसको भूत को भगाने के लिए, तो उसी तरह से भुक्ति और मुक्ति, ये दो भूत हमारे हृदय में सवार हुए हैं तो उनको भगाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। तो ये राधा गोकुलानंद मंदिर या हमारे इस्कॉन का मंदिर है जहाँ कृष्ण कथा होता है, ये मंदिर वो जगह है जहाँ हृदय के भूत निकाले जाते हैं। निकालने का ढंग क्या है, कृष्ण कथा से। केवल कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन मनन करने से हृदय के भूत भाग जाते हैं। वृंदावन के निवासी ब्रजवासी वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही चिंतन करते थे, और जब कृष्ण चले गए, वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, द्वारका गए, तो कृष्ण को भूल नहीं पाए वो, और कृष्ण के विरह में बड़े पीड़ित रहते थे। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ऐसी पीड़ा जो है, ऐसे कृष्ण के प्रेम में विरह की भावना जो है, वो भी दिव्य आनंद है। संसार में किसी प्रिय व्यक्ति से जब हम विरह अनुभव करते हैं तो वो पीड़ा बहुत दुखमय होती है, लेकिन श्री कृष्ण के विरह में जो दर्द ब्रजवासियों को अनुभव होता था, वो दर्द तो था ही, लेकिन इसमें दिव्य आनंद भी था। और खास करके गोपियां कृष्ण के प्रेम के विरह में इतने दुखी हो गई थी कि दिन भर कृष्ण को इधर उधर देखती थी कि आज कृष्ण आएंगे, और कभी कभी ऐसे बात करते थे मानो कि उनके ऊपर कोई भूत सवार हो गया है। कभी मक्खियों से बात करते थे, मधुमक्खियों से, तो कभी फूलों से, तो कभी वृक्षों से, कभी पशुओं से, कभी गायों से, इस तरह से अलग अलग ढंग से वो बात करते थे, क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इतना तीव्र था कि जब श्री कृष्ण चले गए तो वो सहन नहीं कर पाए। और कई जो बुजुर्ग ब्रजवासी थे, उन्होंने नवयुवती गोपियों को देखा कि इनकी हालत क्या है, तो आपस में बात करने लगे। एक ब्रजवासी दूसरे ब्रजवासी को बोल रहे हैं कि अरे इनको क्या हुआ है, शायद इनके ऊपर कोई भूत सवार हुआ है। तो दूसरे ने बोला, नहीं नहीं, भूत सवार नहीं हुआ, नंद का पूत सवार हुआ है। नंद का पूत यानी श्री कृष्ण, तो इनके ऊपर कृष्ण सवार हो चुका है, इसलिए कृष्ण इनके हृदय में आ गया है। कृष्ण के बारे में इनको कुछ मालूम, अलावा इनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे हृदय में चाहे नंद के पूत को हम स्वीकार करें या ये भौतिक संसार के भोग के भूत को हम स्वीकार करें, किसको हृदय में स्वीकार करना है ये हमारे ऊपर है। अगर भुक्ति मुक्ति ये तो भूत हमें हृदय में लाने हैं तो बाहर संसार में बहुत अवसर है, जी भर के हम हृदय को भर सकते हैं अलग अलग प्रकार के भूतों से। लेकिन अगर हमें नंद के पूत को सवार कराना है अपने हृदय में, तो हमें श्री कृष्ण के भक्तों के संग में आना चाहिए। वास्तव में लोगों को भुक्ति और मुक्ति, इन दोनों भूतों से मुक्ति दिलाना, यही परम कल्याण का कार्य है, और उनको श्री कृष्ण के चरण कमलों में लाना ये सबसे ऊंचा भेंट है जो हम लोगों को दे सकते हैं। और ये हमारे आंदोलन का उद्देश्य है, किस तरह से लोगों को कृष्ण भक्त बनाया जाए। यही श्री कृष्ण जिन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा पात्रता न देखते हुए लोगों के ऊपर बरसाई वर्षा की तरह, और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन किया। और उनकी इच्छा थी कि कलयुग के लोग इतने पतित हैं, आध्यात्मिक जीवन में इनकी कोई रुचि नहीं है, इनकी कोई योग्यता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, इनका उद्धार कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि जब तक मैं खुद नहीं जाऊंगा और उन तक ये हरिनाम संकीर्तन का अनमोल भेंट पहुंचाऊंगा नहीं, तब तक इनके लिए कोई उपाय नहीं है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में सब जगह जाकर हरिनाम का संकीर्तन किया करते थे, और भक्तों से सब सारे जन साधारण से प्रार्थना करते थे कि आप भी श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करो, इससे दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, जीवन सफल हो जाएगा और सारी भौतिक पीड़ा नष्ट हो जाएगी। खुद तो वो ऐसे करते थे ही, लेकिन साथ साथ अपने भक्त अपने पार्षदों को भी वो भेजते थे। उनके दो विशेष पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर नामाचार्य के नाम से विख्यात हैं। वो दिन में 22 घंटे हरि नाम का जाप करते थे। ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा था कि किस तरह से कृष्ण लीला में मैं शामिल हो सकूं। मैंने कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान का अपराध किया था 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में। मेरे हृदय में संशय आया था कि ये कृष्ण भगवान है कि नहीं है, ये इतने छोटे से बालक हैं, ये भले भगवान कैसे हो सकते हैं। तो मैंने उनके प्रति भीषण अपराध किया था, इनके ग्वाल बाल मित्रों को गायों को चुरा कर मैंने रख दिया था। मैंने पश्चाताप किया, क्षमा याचना तो की भगवान से, लेकिन उस अवतार में भगवान की कृपा का लाभ उठा नहीं पाया मैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी को पता चला कि वही कृष्ण अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अभी तो मुझे इसमें आना ही होगा। इसलिए हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा जी आए और भगवान की सहायता की उनके लीला में। साथ साथ बलराम जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं वृंदावन के लीला में, वो भी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए चैतन्य महाप्रभु का संग देने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को कहा कि हरिदास और नित्यानंद, आप दोनों गली गली में जाओ, नाम संकीर्तन करो और प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करो कि प्रभु आप ये श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए। ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से उच्चारण करने से क्लास में सोने वाले लोग तो जग ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ हृदय में आत्मा भी जग जाती है। अभी आत्मा तो सोई हुई है, भौतिक जीवन में बहुत मग्न है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से आत्मा जग जाती है। तो कृपा करके गली गली में जाके प्रत्येक व्यक्ति से आप प्रार्थना कीजिए कि आप हरि का नाम लो और हर रोज शाम को आके मुझे रिपोर्ट दिया करो कि आज आपका प्रचार का कार्य कैसे रहा। वास्तव में यह प्रचार सबसे ऊंचा परम कल्याण का मार्ग है। तो हरिदास और नित्यानंद प्रभु गली गली जाते थे, सब जगह से ऊंचे नीचे अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित सब लोगों से जाके प्रार्थना करते थे कि मेरा हम लोगों का आपसे एक निवेदन है, कृपा करके केवल हरि का नाम लीजिए, हरि बोलो केवल हरि का नाम एक बार बोलो। तो ऐसे हजारों हजारों लोग हरि का नाम का उच्चारण करने लगे और इस तरह से रोज आकर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु रिपोर्ट दिया करते थे चैतन्य महाप्रभु को कि हमने जाके आज इस इलाके में प्रचार किया और इतने सारे लोग हमारे संग उन्होंने संकीर्तन किया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते थे। तो एक दिन वो दो ऐसे लोगों के सामने आए जो कि बहुत ही दुष्ट थे वैसे ब्राह्मण परिवार के, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो बड़े पतित थे, बड़े पापी थे। ऐसे बड़े पापी कोई नहीं था। उनका नाम था जगदानंद, जिनको संक्षेप में जगई बुलाया जाता था, और दूसरे थे माधवानंद, जिनको मधाई बुलाया जाता था। तो ये जगई और मधाई दो भाई थे और इतने दुष्ट थे कि लोग इनसे बहुत परेशान हो गए थे। बताया जाता है कि यमराज के जो सेक्रेटरी हैं चित्रगुप्त, वो इनके पापों को लिखते 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 थक गए थे। उन्होंने आशा छोड़ दी कि हमारे यहाँ सारे किताबों का स्टॉक भी खत्म हो गया, सारे हमारे रजिस्टर फाइल भी खत्म हो गए और इनके पापों का अंत होने का कोई नाम ही नहीं है। और उनका हाथ भी दुख रहा था लिखते लिखते लिखते, और जितने ऐसे इतने जल्दी जल्दी पाप करते थे कि जिसके पहले के चित्रगुप्त लिख ले दूसरा तीसरा पाप शुरू हो जाता था। तो लोगों को किसी चोरी करना, खून करना, अपहरण करना, क्या नहीं करते थे, और हमेशा शराब के नशे में पड़े रहते थे। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जब वहां उनके पास में जा रहे थे तो सारे लोगों ने कहा कि आप जो भी करो, सारे संसार में जाके हरिनाम का प्रचार करो, लेकिन इन दोनों के पास में आप मत जाना, ये बड़े खतरनाक हैं, इतने दुष्ट हैं कि बहुत खतरा है, कृपा करके आप इनके पास नहीं जाइए क्योंकि कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु भगवान के भक्त होने के नाते बड़े कृपालु थे, तो कहा कि अगर ऐसा है तो हमें जरूर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि ये हरि नाम के बिल्कुल अधिकारी हैं प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति है। तो वो गए जगाई और मधाई के पास और उन्होंने प्रार्थना की कि कृपा करके एक बार, केवल एक बार हरि का नाम का उच्चारण करो। लेकिन जगाई मधाई नशे में थे, उन्होंने कहा ये कौन है दो लोग जो आए हमें उपदेश देने के लिए, और गुस्सा हो गया उनके ऊपर और उनसे उनको बहुत ही कठोर शब्द बोलने लगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने आशा नहीं छोड़ी, बार बार बोलने लगे कृपा कीजिए एक बार, केवल एक बार हरि का नाम लीजिए। तो नहीं ले रहे थे, जब बहुत गुस्सा हुए उनको बोला कि आप चले जाओ यहां से नहीं तो आपको मार देंगे। फिर भी हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु वहां से नहीं गए, फिर भी उनके पास में रहकर प्रार्थना करते रहे। तब उनमें से मधाई को बहुत गुस्सा आया, जिस मिट्टी के बर्तन में वो लोग, मटके में वो लोग शराब पी रहे थे, उसी मटके को लेकर मधाई ने नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर आक्रमण किया। और जैसे ही आक्रमण किया तो वहां से बहुत खून बहने लगा। तुरंत हरिदास ठाकुर जल्दी गए वापस चैतन्य महाप्रभु के पास में कि आज ऐसे ऐसे हुआ है, ये जगाई और मधाई ने नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर आक्रमण किया है। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल आग बबूले हो गए, क्रोधित हो गए और वो सोच रहे थे कि इन्होंने मेरे भक्तों के ऊपर आक्रमण किया है, ये मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आक्रमण करे, मेरी निंदा करे, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे भक्तों की निंदा उन्होंने की है, भक्तों के ऊपर आक्रमण भी किया है, प्रहार किया है, इसको मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए बड़े क्रोध में आकर चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, उन्होंने सुदर्शन चक्र को पुकारा, सुदर्शन सुदर्शन, और तुरंत उनके बाएं हाथ की उंगली में सुदर्शन आ गया। और उस समय चैतन्य महाप्रभु उस सुदर्शन चक्र को लेकर वहां जाकर जगाई और मधाई का वध करने ही वाले थे, लेकिन उस समय नित्यानंद प्रभु उनके पैर पड़े और कहने लगे कि हे प्रभु, इनकी हत्या मत करो, आप कलयुग के पतित पावन अवतार हो, और अगर आप ऐसे सब लोगों की हत्या, इनकी शरीर की हत्या खत्म करते रहोगे, इसका मतलब है कि सारे पृथ्वी के लोगों को आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग के लोग सारे पापी हैं, कितने पुण्यवान लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर, इसलिए कृपा करके इनकी हत्या आप मत कीजिए। आपका काम है इनके हृदय में जो राक्षस है, अनर्थों के पाप करने की जो प्रवृत्ति है, इस राक्षस को आप मारिए। आपके अवतार का उद्देश्य यह है, न कि लोगों के शरीर को नष्ट करना और उनको मार डालना, उनके हृदय में जो राक्षस हैं, जो भूत हैं, उनको नष्ट करना, ये आपका अवतार का कारण है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नित्यानंद प्रभु, जिनके प्रति ये आक्रमण किया गया है, वो अभी कृपा याचना कर रहे हैं, तो उन्होंने कृपा यह कर दी, जगाई और मधाई के ऊपर क्षमा कर दिया उनको। जब वैष्णव क्षमा करते हैं किसी को, तब भगवान श्री कृष्ण भी क्षमा करते हैं। जहां भक्त की कृपा होती है वहां भगवान की कृपा भी आ जाती है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के प्रति इतने ऋणी होते हैं कि जो भी भक्त चाहते हैं भगवान वैसे करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नित्यानंद प्रभु कृपा याचना करना चाहते हैं जगाई मधाई जैसे लोगों के ऊपर, तो उन्होंने भी कर दी। और उस समय जब मधाई ने देखा नित्यानंद प्रभु का व्यवहार, तो बड़े प्रभावित हुए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़े और बहुत फूट फूट के दोनों रोने लगे और कहने लगे कि हम तो बड़े पापी थे, हमने इतने सारे बड़े बड़े पाप किए हैं, अपराध किया है, आपके शुद्ध भक्त नित्यानंद प्रभु को भी हमने उनके ऊपर आक्रमण किया है, अभी कृपा एक बार हमारे ऊपर आप कृपा करें और हम किसी भी तरह का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है, और फिर जगाए मधाए दोनों ने खुद अपनी इच्छा से गंगा जी के तट पर एक घाट बनाया और अपने हाथों से घाट बनाकर वो वहां भक्तों की सेवा करते थे। खुद प्रत्येक वैष्णव प्रत्येक व्यक्ति जो वहां आता था उसकी सेवा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इस तरह का परिवर्तन हुआ है जगाई और मधाई में, कहां इतने दुष्ट पापी और आज कहां इतने नम्र बन गए हैं कि सब प्राणियों की सेवा करते हैं, खुद अपने हाथों से भक्तों को गंगा जी में स्नान करने के लिए घाट बना दिया है इन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि भक्तों की कृपा से, हरिनाम की कृपा से दुष्ट लोग बड़े अच्छे मार्ग में आ जाते हैं और संत बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। जिस तरह से नारद मुनि ने रत्नाकर को वाल्मीकि बनाया, जिस तरह से नारद मुनि ने मृगारी को एक साधु बनाया, जिस तरह से हरिदास ठाकुर ने वेश्या को एक महान वैष्णवी बनाया, और जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई जैसे दुष्ट पापियों को संत बनाया, भक्त बनाया, उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी 30 साल पहले पश्चिम देशों में गए और नाना प्रकार के पाप करने वाले पाश्चात्य देशों के निवासियों का उद्धार किया और उनको कृष्ण भक्त बनाया, उनको वैष्णव बनाया, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन उन लोगों के लिए नहीं है केवल जो शिक्षित हैं और जो बड़े सुसंस्कृत हैं, जिनके बहुत ही सुकृति है, जो बहुत धार्मिक है, नहीं, ऐसे लोग कलयुग में कितने मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन सबके लिए है, लेकिन खास करके उन लोगों के लिए जो सबसे पतित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भक्ति का मार्ग इस कलयुग में बहुत सुलभ बना दिया है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया ताकि यहां पर भक्त एकत्र होकर कृष्ण कथा करें और समाज के सारे लोग आकर इसका फायदा उठाकर, इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को सुधारें और भक्त बने। वैसे देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ लिखे और इन ग्रंथों का उद्देश्य क्या था, एक ही था कि इन ग्रंथों को पढ़कर लोगों को भक्त बनना चाहिए, उनका जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। अभी दिसंबर महीने में हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में के हर एक क्षेत्र में, हर एक शाखा में, हर एक मंदिर में पुस्तक वितरण बहुत जोरदार किया जाता है। इस साल के इस एक महीने में सारे भक्त एकत्र होकर ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण करने का, ग्रंथ वितरण करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ग्रंथ वितरण का कार्य तो 12 महीने चलता है, लेकिन खास करके दिसंबर के महीने में ये मैराथन चलता है, जहां सुबह से रात तक मंदिर के भक्त तो करते ही हैं, लेकिन अपने अपने अलग अलग घर में रहने वाले भक्त भी शामिल होते हैं और अपने अपने क्षमता के अनुसार जगह जगह जाकर पुस्तक वितरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े कृपा करके बहुत सरल भाषा में आधुनिक जमाने के व्यक्ति के समझ के हेतु, समझ के लिए ये अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं और सुंदर टीकाएं की हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत। आप सब इस पुस्तक ग्रंथ वितरण के भव्य कार्यक्रम में शामिल हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा पहुंचाएं। ये ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म वाक्य है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की मुरली से सारे गाय पक्षी और कीड़े मकोड़े सारे प्राणी, ब्रजवासी, गोपगण, गोपियां सब बिल्कुल प्रभावित हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, प्रेम से उनका दिल हृदय भर जाता था। उसी तरह से ये प्रभुपाद की किताबें जो हैं, जो ग्रंथ हैं, इनके अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है, इसकी वजह से सारे हृदय का मैल धुल सकता है और व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का रस का आस्वादन मिल सकता है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शुद्धिकरण के लिए, हमारे खुद शुद्धिकरण के लिए और सारे समाज के शुद्धिकरण के लिए। समाज में हम ऋणी हैं क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लिया है। हम समाज के ऊपर निर्भर हैं कितने चीजों के लिए, रेलगाड़ी चलते हैं, बस चलते हैं, सड़क में लाइट है, सड़कें हैं, बनाए हुए हैं, कितने सारे चीजें हैं। तो समाज के प्रति अगर हमें ऋण चुकाना होगा तो हमें ऐसे उनको भेंट देना होगा जिससे कि वास्तव में सारे समाज के लोगों का फायदा हो। इसलिए पुस्तक वितरण का ये कार्य परम कल्याण का कार्य है। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि आप अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो। ऐसे इन ग्रंथों का वितरण करने से जो आनंद की अनुभूति आपको होगी वो शब्दों में आप यहाँ प्रवचन में बैठकर समझ नहीं पाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप किताब लेकर, यहाँ से किताब ग्रंथ लेकर जाइए मंदिर से, और सड़क में खड़े होकर, गली गली में जाकर, दुकान दुकान में, लोगों से, सड़कों में लोगों से जाके आप उनसे निवेदन कीजिए कि ये कृपा करके ये किताब लीजिए, भगवद गीता है, देखिए कितने अच्छे ढंग से कृष्ण का उपदेश यहाँ है, प्रभुपाद जी ने कैसे सुंदर ढंग से समझाया है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्चे आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। कई लोग इनकार करेंगे लेकिन कई लोग स्वीकार करेंगे। जब लोग स्वीकार करते हैं तो आप देखिए कि आपको कितना आनंद आता है, आपके रिश्तेदारों को, आपके मित्रों को, आपके पड़ोसियों को, एक एक हाथ में देकर आप छोड़िए उनको, बिना पुस्तक लिए छोड़िए मत। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण सेवा रहेगी, खास करके इस दिसंबर के महीने में। आप में से कितने लोग इस दिसंबर के महीने में बुक मैराथन में, इस पुस्तक वितरण के कार्यक्रम में शामिल होना चाहेंगे, हाथ ऊपर कीजिएगा। बस बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों, बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बच्चे भी जाकर लोगों को कह सकते हैं कि आप ये भगवद गीता लीजिए, और बच्चों के बातें सुनकर लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो बच्चों को भी पुस्तक वितरण के कार्य में लगाया जा सकता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसलिए ये जो कृपा का चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार जगाई मधाई पे कृपा की थी, वही कृपा अभी प्रभुपाद के ग्रंथों में उपलब्ध है। केवल इन ग्रंथों का वितरण करने से हम निमित्त बन जाएंगे और इसलिए हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप कृपा करके इस दिसंबर महीने में हृदय लगाकर कम से कम हर रोज एक घंटा आप पुस्तक वितरण करें। अलग अलग जगह जाएं, एसटी स्टैंड में, बस स्टैंड में जा सकते हैं, रेलवे स्टैंड में, स्टेशन में जा सकते हैं, बाजारों में जा सकते हैं, सड़कों में जा सकते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, लज्जित होने की बात नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोसी हमको देखेंगे तो क्या बोलेंगे। नहीं, आप वास्तव में सबसे ऊंचा कार्य कर रहे हैं कि लोगों तक ये दिव्य ज्ञान पहुंचा रहे हैं। तो पुस्तक वितरण करते समय आप नम्र रहिए और हर्ष उल्लास से, हसमुख चेहरे से लोगों से निवेदन कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। उनको नम्र निवेदन करके उनसे कहिए कि कृपा करके ये किताब ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, और उस किताब में क्या बताया हुआ है संक्षेप में आप उनको बता सकते हैं, लेकिन आपको खुद पढ़ना भी चाहिए। अगर वो कहेंगे कि ये किताब में है क्या, और आप बोलेंगे कि मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ा है, तो बोलेंगे कि फिर मुझे क्यों पढ़ने बोल रहे हो, खुद तुमने नहीं पढ़ा है तो मुझे क्यों पढ़ने बोल रहे हो। तो आप भी इन किताबों को पढ़िए और साथ साथ इनका वितरण भी कीजिए। तो कृपा करके आप सब यहाँ मंदिर में स्टॉल में आप संपर्क कीजिएगा और बताइए कि कितने किताब आप वितरण करना चाहेंगे, हर रोज कितना समय आप इस पुस्तक वितरण के कार्य के लिए करना चाहेंगे। और विस्तार में इस विषय के बारे में चर्चा होगी आज कार्यक्रम के बाद, जब इष्ट गोष्ठी होगी भक्तों के लिए, तो वहाँ इसमें और विस्तार से इसके बारे में चर्चा की जाएगी। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि संसार के सारे जो वचन हैं, किताब ग्रंथ वगैरह हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। सुंदर श्लोक है, सूत गोस्वामी बताते हैं, नयद्वचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। सूत गोस्वामी बताते हैं कि जो शब्द श्री हरि के गुणगान नहीं करते हैं, जिनके नाम के उच्चारण से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, वो शब्द, चाहे वो वाचक शब्द हो चाहे वो लिखित शब्द हो, वो शब्द कौओं के तीर्थ स्थान के तुलना की गई है इसकी। संत लोग समझते हैं कि ऐसे ग्रंथ, ऐसी कथा एक कौवे का तीर्थ स्थान है। और ये संत कहाँ है? नयत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया, भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के धाम में रहते हैं। यहाँ पर भौतिक संसार में रहते हुए भी वो भगवान के धाम में रहते हैं, क्योंकि हमेशा कृष्ण कथा में मग्न रहते हैं। जैसे ये मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है, ये मंदिर भी वैकुंठ है कि यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है। यहाँ नाम का, भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, कृष्ण की कथा होती है, कृष्ण प्रसाद का वितरण होता है, अर्चा विग्रह की आराधना होती है। तो इसलिए ये भी वैकुंठ है। तो जो वैकुंठ रूपी जो भक्त होते हैं, वो ऐसे कथाओं को कौवे के तीर्थ स्थान मानते हैं। और ऐसे भक्तों, भक्त जो है, सूत गोस्वामी बताते हैं, वो हंस के बराबर है। आपको मालूम है कि कौवे जो होते हैं हमेशा गंदे से गंदे जगह में जाते हैं, वहां जाना पसंद करते हैं। कौवे को आप अच्छा बहुत ही सुगंधित स्थान दीजिए और एक गंदा जगह दीजिए, कौवा कहाँ जाएगा? गंदे जगह के पास जाएगा। उस खूबसूरत सुंदर खुशबूदार जगह में जाने के बजाय वो उस गंदे जगह में कचरे के डब्बे के पास में जाएगा वो, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा होता है। लेकिन जो हंस होते हैं, हंस हमेशा सुंदर रम्य वातावरण में रहना पसंद करते हैं, तालाब में जहाँ कमल पुष्प हो, बहुत सुंदर वातावरण हो। तो हमें क्या करना है? संसार में सभी को हंस बनाना है, कौवे की प्रवृत्ति से मुक्त होकर उनको हंस बनाना है। लेकिन जब पुस्तक वितरण करेंगे तो ऐसा मत बोलिए लोगों को कि आप कौवे के बराबर हैं, आपको हंस बनाने के लिए हम आए हैं, ऐसा हमने सुना है क्लास में। तो ऐसा कहेंगे हम लोग तो हमारी पिटाई होगी। नम्र होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि मैं खुद कौवे की तरह हूं, मुझे हंस बनना चाहिए दूसरे भक्तों के संग में आकर। और कौवे से हंस का परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन के लिए ये पुस्तक वितरण की सेवा बहुत आवश्यक है। इसका अनुभव कीजिए आप, केवल अभी सुनिए नहीं इसको, केवल हाथ में लेकर बाहर जाइए, सड़क पर जाइए, लोगों को बोलिए कि आपकी कृपा करके लीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है आपको, कितना रस आएगा आपको। हाँ, दो चार लोग थोड़ा तिरस्कार भी करेंगे, अपमान भी करेंगे, उसे डरना नहीं चाहिए कि लोग हमारा इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, हम क्यों जाएंगे उनके पास में, नहीं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कैसे गए? जब जगाए मधाए ने उनका इतना अपमान किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहना छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि ये लोग हमारा अपमान करते हैं, प्रचार ही हम छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं कहा, करते रहे। उसी तरह से जब आप पुस्तक वितरण करने जाएंगे तो कोई लोग नहीं भी लें या कुछ उल्टी सुल्टी बातें बोल भी दें, तो इसे निराश नहीं होना चाहिए। केवल भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि किस तरह से इनको भक्त बनाया जाए। कम से कम उनको बोलिए छूइए तो, किताब तो कम से कम छूइए, उनके हाथ में तो रख दीजिए एक बार, अगर छुएंगे भी किताब तो थोड़ा कुछ तो लाभ होगा उनको। खोल के उनको थोड़े चित्र दिखाइए, भगवान कृष्ण के कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं, देखिए जैसे यहाँ कम से कम जब वो पितृ को देखेंगे तो हृदय का परिवर्तन थोड़ा बहुत हो जाएगा। कितने भक्त ऐसे हैं जो भक्त बने हैं केवल ये चित्र पर देखकर, और आज उसने किताब ले लिया, किताब को छुआ भी, किसी तस्वीर को देखा, आगे चलकर कहीं ना कहीं उसका अगर दिमाग बदल जाए, उसकी स्वीकृति उसका समय आ जाए, वो भक्त बन सकता है। एक भक्त बताते थे कि जब वो किसी के पास पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनके हाथ में किताब दे देते हैं, किताब खोलकर एक ऐसे पिक्चर जहां कृष्ण का बहुत सुंदर तस्वीर हो उनके हाथ में खड़े कर बिठा देते हैं, तो उसको देखना ही पड़ता है। और जब वो कृष्ण का तस्वीर देखता है तो उसके चेहरे से जो दिखाई पड़ता है उसे उनको पता चलता है कि आगे चल के क्या होगा। कई लोग कृष्ण के चित्र को देखते हैं, बड़े सुंदर है, उनकी आंखों में एक चमत्कार जैसा एक आंखों में एक चमक आ जाती है, कितनी सुंदर तस्वीर है। लेकिन थोड़े लोग ऐसे हैं तो उसको हाथ लगाते मानो कि किसी उन्होंने मच्छर को या कुछ काट दिया, उनको यूं हाथ पीछे कर देते हैं। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से लोगों के हाथ में देना है हमें, और उनसे प्रार्थना करना है कि कम से कम देखिए तो सही, आगे चल के पढ़िए, आपके लिए लीजिए, आपके परिवार के लिए लीजिए, बच्चों के लिए लीजिए। इस तरह से किसी न किसी तरह से ये न तो प्रकार है ना मना कृष्ण किसी न किसी तरह से लोगों को प्रेरित करना चाहिए इन किताबों को लेने के लिए, और खुद भी हमें प्रयास करना चाहिए इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए रोज। फिर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को हम बढ़ा पाएंगे, इसका विकास हो पाएगा और हम समाज के प्रति कल्याण का कार्य कर सकेंगे। तो आप सबसे कुछ नम्र निवेदन है, कृपा करके इस बुक मैराथन में दिसंबर महीने के ग्रंथ वितरण के कार्यक्रम में शामिल होइएगा, और जितना हो सके आप